ओम शांति। इस सृष्टि में आत्माओं का पार्ट कई तरह से प्ले होता है। सदियां बीती, वर्ष बीते, महीने बीते, युग बीते, सप्ताह बीते, फिर घंटे बीते, मिनट, सेकंड, पूरा कल्प बीतने जा रहा है। तो इस सारे कल्प में हम आत्माओं ने अनेक जन्म लिए और बहुत स्थूल सूक्ष्म रूप से कई प्रकार के हिसाब किताब बने। कई आत्माओं के साथ अच्छे भी बने, कईयों के साथ साधारण हिसाब किताब भी बने, कईयों के साथ निकृष्ट हिसाब किताब भी बने। तो जब तक हम इस सृष्टि पर पार्ट प्ले करते हैं, किसी न किसी के साथ हमारा हिसाब किताब बन ही जाता है, ना चाहते भी। चाहे वो मनुष्य आत्मा से, प्रकृति से, या फिर जानवर से भी कह सकते हैं, या फिर कुछ अदृश्य गुप्त हिसाब किताब है जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो हैं। और वो जो गुप्त हिसाब किताब है उनको जानना थोड़ा टेढ़ी खीर प्रतीत होती है। जिन हिसाब किताब का हमें मालूम होता है उन्हें चुक तो करना आसान होता है, लेकिन जो हिसाब किताबों को मालूम नहीं है उन्हें चुक तो करना थोड़ा भारी पड़ता है। जैसे कोई हम किसी से कर्जा लिया हुआ है, हमारे पूर्वजों ने, और हमें पता है, तो हमको हिसाब किताब चुक तो करना आसान है कि पता है हम लिया हुआ है और पूर्वजों ने कर्जा लिया है, बिना बताए चले गए, और जो कर्जा लिया वो खाया हमने, हमारे लिए उठाया था, हमारे पेट में वो गया है, बिना बताए चले गए, उस हिसाब किताब का हमको पता नहीं पड़ता है, वो सूक्ष्म रहता है। भले वो हम नहीं चुकतू करते हैं, वो उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन किसी न किसी रूप से हमें चुकतू करना ही पड़ता है वो। तो आज देखेंगे जो प्रश्नों की कड़ी चल रही है, आज बहुत अहम प्रश्न है आज भी। वैसे तो हर प्रश्न अहम ही होता है, लेकिन आज जो प्रश्न है, बहुत सारी आत्माओं के ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके इस तरह के हिसाब किताब हैं। तो आज का ये प्रश्न है, कई ब्राह्मण आत्माओं पर भी ईवल सोल्स का प्रभाव पड़ जाता है, उस समय क्या करना चाहिए? कई ब्राह्मण आत्माओं पर भी ईवल सोल का प्रभाव पड़ जाता है, उसमें क्या करना चाहिए? तो भावा के महावाक्य में तो उत्तर है, इसके लिए सेवा केंद्र का वातावरण बहुत शक्तिशाली सदा रहना चाहिए और साथ अपना भी वातावरण शक्तिशाली रहे, फिर यह ईवल स्पिरिट कुछ नहीं कर सकती है। यह मन को पकड़ती है, मन की शक्ति कमजोर होने के कारण ही इसका प्रभाव पड़ जाता है। मानो कोई कमजोर है और उसके ऊपर प्रभाव पड़ भी जाता है, तो शुरू से पहले से ही उसके प्रति ऐसे योग युक्त आत्माएं विशेष योग बठी रख करके उसको शक्ति दे, और वह जो योग युक्त ग्रुप है वह समझे कि हमको यह विशेष कार्य करना है। जैसे और प्रोग्राम होते हैं वैसे यह प्रोग्राम इतना अटेंशन से करें तो फिर शुरू में उस आत्मा को ताकत मिलने से वह बच सकती है। भले वे आत्मा परवश होने के कारण योग में नहीं भी बैठ सके, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे का प्रभाव होता है। तो वह भले ही ना बैठे, लेकिन आप अपना कार्य निश्चय बुद्धि होकर के करते रहो, तो धीरे धीरे उसकी चंचलता शांत हो जाएगी। वह ईवल आत्मा पहले आप लोगों के ऊपर भी वार करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप समझो यह कार्य करना ही है, डरो नहीं, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हट जाएगा। बाबा ने कई दफा मुरली में कहा है कि अंत में ईवल आत्माओं का भी बार होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे ही हिसाब किताब है उनके साथ। तो पहले से ही हमको इतना शक्तिशाली बनाना है, स्वयं को तैयार करना है, जो हम अंत में वो हिसाब किताब चुकतु करने की बजाय पहले से ही उस हिसाब किताब से मुक्त होकर अन्य जो कार्य हैं उनको आसानी से कर सके। तो जो ईवल आत्माएं हैं, वैसे देखा जाए ईवल कोई अपने आप बनता नहीं है, कुछ समय, परिस्थितियां, वातावरण, कोई ऐसी बात आती है जो बन जाता, आदमी बनना जबरदस्ती बन जाता है। कई प्रकार की तमन्नाएं, इच्छाएं, अनावश्यक इच्छाएं, कामनाएं होती हैं, तृष्णाएं है जी, किसी का प्रेशर होता है तो हिसाब किताब बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसी के अंडर में काम करता है और उसका पूरी जिंदगी उसके पास ही काम करना है, तो वो अपने परिवार की आजीविका के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कई बार उसको दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता है। तो उसको कई बार किसी का खून करने के लिए भी उकसा देते हैं। संसार में तो ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते रहते हैं, तो हिसाब किताब तो बन जाते हैं। किसी ने बहुत तंग किया हुआ किसी को, किसी की प्रॉपर्टी हड़प कर ली है, अचानक मारे गोली किसी को मारी थी, लग किसी को गई, बहुत सारे हिसाब किताब हो जाते हैं। तो हम आत्माओं के अनेक जन्मों के हिसाब किताब हैं। सत्ययुग त्रेता में तो बाबा कहते आप कर्म जो करते वो अकर्म हो जाते हैं, कोई भी कर्म ही नहीं है। लेकिन विकर्मों की श्रृंखला द्वापर युग से जब शुरू होती है, अब द्वापर कलयुग अनेक जन्म लिए हम सबने, तो क्या क्या हिसाब किताब बने हैं कुछ कह नहीं सकते हैं। कई लड़ाइयां लड़ी होंगी, किसी की रजाई छीनी होगी, किसी को दी भी होगी, किसी की छीन के किसी को दे दी है, वो भी तो हिसाब किताब है ना। वरना एक का छीन लिया दूसरे को बोले भर दिया है, हिसाब किताब तो है ना। जैसे डाकुओं का कई किस्से सुनते हैं, बड़े दयालु होते हैं, लेकिन वो दया किस पर करते हैं, लेकिन पहले निर्दयी भी होते हैं, तभी तो साहूकारों का छीन के गरीबों को देते हैं। कर रहे हैं भला, लेकिन एक तरफ तो गड़बड़ हो रहा है, भावना ठीक है, विधि ठीक नहीं है। हाँ, भावना ठीक है, विधि में गड़बड़ है। तो ऐसे सूक्ष्म हिसाब किताब भी इस ब्राह्मण लाइफ में भी जो बनते हैं वो तो और ही कड़े होते हैं। लेकिन जो प्रश्न है कि ईवल आत्माओं का प्रभाव जो ब्राह्मण आत्माओं पर पड़ता है, उससे मुक्त होने के लिए बाबा हमको कह रहे हैं। ऐसे तो कई किस्से हमने देखे भी हैं, आपने भी देखे होंगे। संसार में तो अज्ञान काल में भी आपने देखे होंगे, कई कई गांव में तो ऐसे होता है कोई थोड़ा सी भी ऐसा परिस्थिति में दिखता है कि इसके ऊपर किसी का प्रभाव है, तो गांव वाले तो उसको मार देते हैं, कहते हैं डायन है, उल्टा उसको मिर्ची, उसके मिर्ची की धुनी लगाते हैं। हमने खुद देखा हुआ है, हमारे गांव में हमारे रिलेटिव एक थे, हम छोटे थे उस समय, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होके उस व्यक्ति को, वो सामान्य दिखता था लेकिन कभी कभी कुछ कुछ हो जाता था उसको, तो उसको एक कमरे में बंद करके मिर्ची की धुनी देते थे उसको। अब बताइए कमरे बंद कर दिया और लाल मिर्ची की धुनी दी जा रही है, क्या हालत होगी उस आत्मा की? उसके बावजूद भी वो आत्मा नहीं आती थी जो उसके अंदर आती थी, फिर कुछ समय बाद फिर वही हाल उसका, क्योंकि जब मिर्ची की धुनी दी तब तो वो निकल जाती होगी। और वो झेल कौन रहा है जिसके अंदर वो, तो कितना कड़ा हिसाब किताब है। उसने मिर्ची की धुनी उसने दी होगी कईयों को, या हो सकता नया जन्म नया हिसाब किताब क्रिएट हो रहा हो। तो संसार में ऐसी कई रूढ़िवादी परंपराएं हैं जो न चाहते भी कई प्रकार के कई आत्माओं के हिसाब किताब बन जाते हैं। बाबा कहते हैं हां में हां मिलाना भी हिसाब किताब बन जाता है, गरम चिमटा भी लगाते हैं, कई कुछ करते हैं, बिल्कुल गरम गरम लोहे की सलाखें उसको लगा देते हैं। तो संसार में तो ईवल आत्माओं के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। लेकिन हमने देखा है हम बाबा के बच्चे हैं, विश्व कल्याणकारी, हमारा जो उन आत्माओं के प्रति रवैया है, हिसाब किताब है, वो है कल्याणकारी है, उनको दुख देने का नहीं है, उनको बल्कि जो बंधन में बंधे हुए हैं उनसे छुड़ाने का है। जैसे बाबा दुख हरता है सुख करता है, ऐसे हम आत्माएं भी मास्टर दुख हरता सुख करता है। अब हमें बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तो कैसे ज्ञान के तीसरे नेत्र के माध्यम से अगर हमारे मन में सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना है, वो ईवल आत्मा भी है कोई भी है, लेकिन तो देखा है वो उसमें मान जाती है। लेकिन कई दफा ये भी देखा ज्ञान में आने के बाद भी कोई लोग उसको उल्टा उल्टे रास्ते से उसको भगाना चाहते हैं। वास्तव में विधि पूर्वक जो बाबा ने नए प्रकार की विधियां बताई हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो बहुत सहज हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले बाबा ने बताया कौन सी शक्ति चाहिए, निर्भयता की शक्ति चाहिए सबसे पहले। हाँ, कोई कोई ऐसे कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो जो एक अज्ञान काल की मुहावरा बन गया वह धारणा है, वो अवधारणा जो है फिर इस ब्राह्मण जीवन में नहीं चल सकती वो। हाँ वो तो भूत लात मार के जाता ना। तो ज्ञान काल और अज्ञान काल में जमीन आसमान का अंतर है, हमारी सोच टोटली बदल चुकी है, पहले वाली नहीं रही है। इसलिए बाबा कहते ना जीते जी मर गए तुम पुरानी दुनिया से, अब मर गए तो पुरानी दुनिया याद कैसे आएगी। तो हमारी तो विधियां ही सारी टोटल अलग हैं, वो डिफरेंट है, यूनिक है एक, और उस हर विधि में सिद्धि समाई हुई है, क्योंकि सिद्धिदाता कौन है साथ में, स्वयं उसका साथ है। अगर भगवान के कार्य में सफलता नहीं होगी तो कैसे होगी, कहां होगी। तो बाबा की विधियां बड़ी यूनिक हैं। ब्राह्मण जीवन में भी कई आत्माओं पर कई प्रभाव पड़ता है, लेकिन देखा विधि पूर्वक योग का प्रयोग करते करते बाबा का साथ के अनुभव करते करते मुक्त हो गई। तो इस कार्य के लिए सबसे पहले तो चाहिए निर्भयता की शक्ति, उन आत्माओं से डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा उनका मन कमजोर होता है, इविल स्पिरिट जो होती है वो इतनी ताकतवर नहीं है। हाँ ताकतवर है वो नेगेटिविटी में ताकतवर है, पॉजिटिविटी में नहीं है। अगर हमारे में पॉजिटिविटी कम है, सकारात्मक ऊर्जा अंदर में कम है, एनर्जी कम है, अलौकिक ऊर्जा कम है, तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। अगर हम परमात्म शक्ति से चार्ज हैं, फुल चार्ज हैं, तो उनका प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए स्वयं को पहले निर्भयता से संपूर्ण संपन्न करना है, निर्भयता की शक्ति, डरना नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि हमने चार पांच आत्माओं से छह सात तो केस हमने देखे हुए, एक बार तो इधर ही देखा था इसी शाम के टाइम में, सवेरे के टाइम में भी एक बार। तो वो आत्माएं आती हैं लेकिन वो ताकतवर नहीं होती है, वो आती हैं कुछ प्राप्ति करने के लिए, जहां उसको कुछ मिलता है शांति के लिए, क्योंकि तड़फ रही है भटक रही है, उसको ठिकाना चाहिए। तो एक दफा पहले भी बताया था, यहां एक छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी माना होगी 14-15 16 साल की, शांति स्तंभ के सामने एवरे हल्दी में थी। तो उसके सामने एक उसके बीच में आत्मा आती थी और वो आके मुस्कुराती थी, वो अच्छी आत्मा थी, इवल नहीं कहेंगे उसको। हाँ जी हाँ, बूंदी का वो नेपाल की वो बहन देख। तो वो ایور ہیلدی میں تھی، کئی بار اچانک آ جاتی تھی، آتے اس کا مکھ مسکراتی تھی، اس کا ہوا بھی چینج ہو جاتا تھا۔ تو ہم ایک بار آنے آئے، یہاں سے گئے اس طرف، تو دیکھا وہ سب لوگ اکٹھے ہوئے، تو ہم بھی گئے، ہم وہاں دیکھا، تو ہم نے پھر پوچھا، ہم نے بھی اندر میں کیوریوسٹی کو کچھ پوچھے بھی کیا بات کرے سبھی۔ تو جیسے ہم گئے، اس نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا اور انگوٹھا ہمارا چوسنے لگی، وہ انگوٹھے چوسنے لگی۔ تو ہم نے بولے یہ کیا کر رہی ہے انگوٹھا چوس میں، ہم نے سوچا کوئی چھوٹا بچہ ہوا، سکتا اس کے اندر آ گیا، جیسے چھوٹا بچہ نپل کو کیسے چوستا ہے، بیسے چوسنے لگی۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے پوچھا تم اس لیے یہاں کس لیے آئی ہے، بولا مجھے ٹولی کھانی ہے ادھر، بابا کی ٹولی ہے۔ تو ہم سمجھے یہ بی کے آتما ہوگی اس کے اندر، وہ بی کے ہی تھی۔ تو پھر وہ شانتی استمبھ کے سامنے بھی، تو میں بولے ٹولی یہاں تھوڑی ملتی ہے، ٹولی تو مدھوبنی میں ملتی ہے۔ تو بولے مدھوبنی ہے، میں بولے مدھوبنی تھوڑا نہیں، یہ تو ہماچل پردیش ہے۔ ہم نے ایسے اس کو تھوڑا یہ کرنے کی کوشش کی، بولا نہیں یہ مدھوبنی ہے۔ اچھا، میں بولا کہاں سے آئی، بولے نیپال سے آئی۔ تو میں بولا تم ادھر کیوں آئی، بولا ٹولی کھانی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ میں شانتی ون میں بھی آئی تھی بابا سے ملنے، لیکن وہاں میں کسی کے اندر پرویش نہیں کر سکی۔ ہم نے پوچھا کیوں، کیونکہ بولا بہت بڑا وہاں شکتیشالی واتاورن تھا، بابا نے جو یہاں ذکر کیا، تو اس واتاورن میں کسی کے اندر گھس نہیں سکی۔ تو میں بولا اس کے اندر کیا، مدھوبن میں بھی تو شکتیشالی واتاورن ہے۔ بولا یہ آتما جو امرت ویلا نہیں کرتی ہے، یہ بولا تو شکتی کی راج کیا ہوا امرت، جس لیے بابا نے کئی دفعہ مرلی میں کہا جس کا، جس برہمن آتما کا امرت ویلا شکتیشالی ہے اس کا سارا دن شکتیشالی رہے گا۔ تو اس کی کمزوری کیا ہوئی، امرت ویلا نہیں کرتی، اس لیے گھس گئی اس میں۔ تو لیکن تنگ نہیں کر رہی تھی اس کو۔ تو میں بولا چلو تم ٹھیک آ بھی گئی اس کے اندر۔ پھر اس نے بتایا تھا کہیں بعد میں پتا چلا تھا کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو شریر چھوڑا تھا اس آتما نے، تو اس کے اندر وہ آتی تھی۔ تو پھر ہم نے پھر اس کو بتایا بھی دیکھو اس کی اچھا تھی ہاں مدھوبن میں بابا سے ملنے کی، دیکھو ہاں وہاں آتے آتے راستے میں اچھا تھی لیکن پورا نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اپنی اچھا کی پورتی کے لیے کچھ بھی کرے گی وہ، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ دکھ نہیں دینا کس کی، اس کے لیے وہ دکھ نہیں دے رہی تھی۔ لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ دیکھو اس کے اندر تم بار بار آ رہی ہے، اتنے لوگ آس پاس میں، ان کا ٹائم تو جا رہا کہ نہیں جا رہا، ہے نا، ان کا ٹائم جا رہا ہے، انرجی جا رہی ہے، تو یہ حساب کتاب بھی بن رہا تیرا ان سب کے ساتھ، اس لیے تم اس کے اندر نہیں آ، تم بابا کو یاد کر اور ہم بھی تیرے لیے یوگ کریں گے اور تم کو مکتی مل جائے گی، نیا شریر مل جائے گا۔ تو ہم نے ایسے، باقی ڈرامہ میں ہوگا وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو بابا نے کہا کہ ایک یوگ یکت گروپ ہونا چاہیے اس کے لیے یوگ کریں، تو پھر ایسے اس سے بات چیت کی تھی۔ تو پھر وہ جیسے وہ اصلی اس میں آئی تو دیکھے انگوٹھا منہ میں ڈالا، باہر کر دیا اس نے، کیونکہ وہ تو دوسری آئی ہوئی، پہلے والی دب گئی نیچے۔ تو ایسے ایسے قصے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ تو یہ تھی، لیکن ایک اور تھی، وہ بھی ایک ٹیچر وین کے اندر آئی تھی، وہ بھی ہم نے دیکھا تھا۔ تو وہ بہت زور بہت تھا اس میں، لیکن ہم ڈرے نہیں، ہم بھی تین چار لوگ تو تھے، چار پانچ لوگ تھے، ہم نے بھی اس کو پکڑ لیا ادھر سے، بھلے وہ ٹیچر وین تھی، ہم نے ادھر سے پکڑا اس کو اچھی طرح سے، لیکن پکڑنے سے پکڑ میں نہیں آ رہی تھی، طاقت بہت اس میں۔ لیکن پھر ہم نے اس کو بھی بتایا کہ آپ کے آنے سے حساب کتاب نیا بن رہا ہے نا، یہ تو دوسری تھی۔ لیکن ایک اور تھی شانتی ون میں، وہ تو نکلیش بھائی بھی ساتھ میں تھے، پہلے بھی بتایا تھا، وہ بابا ملن کا چل رہا تھا ٹرن میں، تو ہم شاید پانچ نمبر گیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے پیچھے، اور ایسے ہم دونوں کٹھے بیٹھے تھے نکلیش بھائی اور ہم، کرسیوں پر ہی تھے، اور پیچھے سے ایک ماتا اٹھ کے آئی، دبلی پتلی تھی، اور آگے وہ گرل لگی تھی، کراس کر کے آگے آ گئی، اور آگے جانے کا اس نے پریاس کیا۔ تو سب آس پاس میں تو سب سے بیداری بھائی بہنیں تھے، تو انہوں نے تو کوشش نہیں کی ماتا کو کیسے پکڑے، ہم نے تو پکڑ لیا اس کو، لیکن زور بہت تھا، وہ بھی پتلی تھی، دبلی پتلی تھی ماتا، تو نہیں کنٹرول میں آ رہی تھی۔ پھر ہم نے نکلیش بھائی جی کو کہا، تو انہوں نے بھی پکڑا، لیکن کیسے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، دھو کے قابو میں بھی نہیں آ رہی تھی، وہ سک پکا گئے ہاں، تو وہ مذاق بھاری پڑ گیا ان کو۔ تو وہی یہ بات وہاں بھی ہوئی۔ تو پھر کیا ہوا، وہ ماتا جی آگے گئے، تو پھر ہم نے نکلیش بھائی اور ہم نے دونوں پکڑے، لیکن وہ لیٹ گئی، کنٹرول میں آ نہیں رہی ہے دونوں کے۔ پھر بھی ہم نے دونوں میں بڑی کوشش کر کے ہم نے بازو سے پکڑا، انہوں نے پاؤں سے پکڑا، اور پھر اس کو باہر لے کے آ گئے۔ پھر نکلیش بھائی نے پانچ سات پانی کے ٹھنڈے شیٹے ڈالے اس کو، تو تھوڑا سا اس کو جاگرتی آئی، پھر نارمل اوستھا میں آ گئی، وہ تو چلی گئی ہوگی بیچ میں سے۔ پھر وہ آ گئی تو ہم نے اپنی کرسی اس کو دے دی، फिर उसको वहां बिठा दिया, एक सेब था हमारे पास वो भी उसको दे दिया। तो 5-7 मिनट फिर हमने पूछा आगे क्यों जा रही है, बोला मुझे बाबा से मिलना है। तो मतलब बाबा से मिलना तो इधर से रास्ता ना, इधर क्यों जा रही है। फिर खैर उनको बिठाया तो 5-7 मिनट तो वो ठीक ठाक अवस्था में रही और फिर आ गई वो वापस, फिर वही उसका चालू होगी गतिविधि। तो फिर हमने पकड़ के फिर हम बाहर लेके आए, तो बाहर ले आके फिर लोगों में भी काफी हलचल होगी। फिर पता किया कहाँ की, वो दिल्ली सेंटर थी एक, फिर उसके सेंटर के भी आए, एक माता जी आ गई, बोला इसके अंदर वो आती है। तो पता चल ही गया था भी कोई आया हुआ है। तो फिर बाहर उसको बिठाया कुर्सी पर, बड़ा जोर से हमने पकड़ा उसको। तो फिर हमने पूछा कहाँ से आए तुम, कहाँ जाए। तो उसने बोला मैं जयपुर से आया हूँ। वो बहन के अंदर भाई की आत्मा थी, बोला जयपुर से आया, कौन से गांव से आया। बोला बहन ही बताऊंगा, मैं क्यों बताऊंगा उनको। तो मैं बोला इसके अंदर क्यों आया, बोला इसने हमको पिछले जन्म में बहुत दुख दिया है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको तो मार के रहेंगे। तो वो तो बहुत खतरनाक था। तो उसने एड्रेस नहीं बताया, फिर वहां से जैसे तैसे हम कहा तपस्या धाम में ले गए, तपस्या धाम में लेके उसको पकड़ के। अच्छा फिर जब इससे डायमंड हॉल से बाहर बिठाया तो कई लोग निकले जो बताया कि लातों से भूत बातों से नहीं मानते। तो ऐसे कई लोगों ने बड़ा गुस्से से बोला इसको जूते मारो। हमको तो दिल में बहुत बात लग गई भाई, एक तो अपने परिवार की है, बाबा कहते वन वर्ल्ड वन फैमिली है, और हम एक परिवार के हैं, हमारे परिवार का कोई किसी को दुख हो रहा है और ऊपर से हम और उसको दुख दें, भले दूसरी आत्मा भी आई है वो भी है तो उसी भगवान का ही ना। तो हमको बड़ा हार्ट हुआ अंदर में। तो हमने उसको बोला तुम क्या बोल रहे हो यार, आप क्या बोल रहे हो ऐसे। तो खैर फिर वहां से हम लेके गए उनको तपस्या धाम में। तो फिर 2-4 सेंटर के उनके भी भाई और आगे, और फिर तपस्या धाम में उनको जाके बिठाया। तो हमने बोला बाबा से दृष्टि लो सामने। तो बोला मैं नहीं लूंगा दृष्टि, उन्होंने देखा ही नहीं उतरा, वो बहन थी अभी, हमने तो पकड़ा था इधर से। फिर मैंने उनको ना बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा, फेरा, मतलब देख मैं तेरा भाई हूं ना, हम तेरे भाई हैं ना, नहीं तो हमको क्या पड़ी है, तुम करता रहते रहे साफ तब दुखी होता रहे, फिर हमारे लिए हमारे मन में आपके प्रति कल्याण की भावना, हम अपना टाइम स्पेंड करें खर्च कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आपके कल्याण की बात कर रहे हैं, तुम दृष्टि ले तेरी मुक्ति हो जाएगी, तेरा हिसाब का पूरा हो जाएगा, तुम तेरे दुख सारे खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे हाथ में उसके सिर पर फेरता रहा और वो फिर धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन ऊपर की, फिर दृष्टि लेने लगी। फिर बाबा से दृष्टि ली तो 2-5 मिनट के बाद दृष्टि लेते लेते वो आत्मा चली। फिर हमने उसके बीच में ये भी बोला उनको कि हम आपके लिए योग करेंगे, इसके अंदर नहीं आना, क्योंकि एक तो हिसाब था पहले से बन ही गया, अभी उसको कुछ नहीं कर सकते। अब मान लो आपने इनसे बदला ले भी लिया तो फिर नया हिसाब था बन जाएगा, फिर ये आत्मा आपसे बदला लेगी, फिर आप ऐसा कब तक करते रहेंगे। आप जहां आए हो ये इतना पवित्र स्थान है, भगवान का अवतरण भूमि है, और यहां आपके सारे हिसाब किताब चुक्त हो जाएंगे। तो आप तो एक पुण्य भूमि पर आए हैं, आपका भी कोई थोड़ा पुण्य है तभी आप यहां आए हैं। तो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे वो आत्मा चली गई। और फिर 2 साल के बाद वो भाई आया तो सेंटर के, तो बोला वो आत्मा ठीक, अभी वो भाई ठीक है। तो माना ऐसे हम आत्माओं के बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब होते हैं जो पता नहीं चलते हैं। तो उन आत्माओं के लिए एक तो बाबा ने कहा, एक तो चाहिए निर्भयता की शक्ति, मुख्य रूप से 7 शक्तियां चाहिए हमारे में वो, अगर इस प्रकार की आत्माएं हैं तो। सबसे पहले निर्भयता की शक्ति, और दूसरी सामना करने की शक्ति, ताकत तो नहीं सामना हम बात उससे बात कर सकें, और तीसरी समाने की शक्ति, उस बात को हम फैलाएं नहीं, चौथी सहन शक्ति, अगर सामने से कुछ मार भी है तो सहन कर लो उसको। दूसरी बात ऐसी आत्माओं से अनुचित बात करनी नहीं चाहिए कोई भी, दुर्व्यवहार वाली, जैसे बता दिया कि इसको जूते मारो, अब सुन तो लिया ना उसने, वो क्या सोचेगी कि भगवान का बनने के बाद भी ये आत्माएं ऐसी है तो हमारा कल्याण कौन करेगा, उद्धार कौन करेगा। इसलिए गलती से भी बाबा कितने स्वप्न में भी आपके संकल्प कैसे होने चाहिए, कल्याणकारी होने चाहिए। तो हमारे संकल्प सबके प्रति कल्याणकारी होने चाहिए। तो सहन शक्ति चौथी, पांचवी 2 मुख्य शक्तियां और है, परखने की शक्ति, ये किस भाव से आत्मा आई है, और निर्णय शक्ति, क्या करना है क्या नहीं करना है। और लास्ट में इन शक्तियों के लिए पवित्रता की शक्ति चाहिए, क्योंकि कुछ हम अनुभूति तभी करा सकते हैं जब हम पवित्रता से भरपूर हैं। पवित्रता कौन सी, विचारों की भी प्योरिटी चाहिए, भले हमारी जो हम संपूर्ण पवित्र नहीं है लेकिन कम से कम कल्याणकारी प्योरिटी तो चाहिए ना, उसके प्रति हम कल्याणकारी संकल्प तो रख सके ना। उसके कल्याण का मार्ग तो हम खोल सके, उसको कुछ दिखा सके ना, उतना तो कर सकते ना। तो ये सात प्रकार की मुख्य शक्तियां हैं जो हमारे अगर अंदर हैं तो हम उनको कुछ अनुभव करा सकते हैं। तो डरना नहीं किसी ने, बाबा ने कहा ना वो आत्मा मन से कमजोर है। तो एक व्यक्ति पहले मन से कमजोर है, गिर रहा है बार बार, और ऊपर से हम और गिरा दें उसको, तो हमारा दायित्व तो ये नहीं है ना। वो तो बेचारी चंचल है, और जिसके अंदर आई है वो भी दुखी है, दोनों दुखी हैं, और ऊपर से हम कह रहे हैं इसको ऐसे करो वैसे करो, तो वो कैसे उठेगी। तो हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है कि उन आत्माओं को मुक्ति देना। वो तो ठीक है बाबा ही दिलाएंगे जो भी है, लेकिन कम से कम कुछ साकार में माध्यम चाहिए उन आत्माओं को। तो हमारे मुख से बोल ऐसे निकले, संकल्प ऐसे उनके प्रति चलें कि उनका भी कल्याण हो जाए। तो सात प्रकार की शक्तियां जिसे हमको उन ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उन आत्माओं को मुक्ति के लिए इनका उपयोग जरूरी है, और ये लंबे समय से चाहिए। और ये शक्तियां जरूरी नहीं है कि हम इन सात शक्तियों के ऊपर अलग से काम करेंगे। ये हमारे बाबा का ज्ञान ऐसा है कि हर शक्ति हर समय थोड़ी 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 हमारे अंदर जमा होती जाती है। ये संगठन की शक्ति है, अब हम संगठन में बैठे हुए हैं तो ये शक्ति अंदर में जमा हो रही है। ये थोड़ा नहीं हम अलग से कुछ टाइम दे रहे हैं, प्योरिटी की है। अब ये प्योरिटी का वातावरण है, पवित्रता की बातें हो रही है, ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान की बातें हो रही है। तो ये सारी शक्तियां सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर समाती जा रही हैं। इसलिए बाबा ने कहा सबसे पहले सेवा केंद्र का वातावरण शक्तिशाली, दूसरा स्वयं का वातावरण शक्तिशाली, तीसरा एक विशेष योग का ग्रुप ऐसा बनाओ जो योग भट्टी करे उस आत्मा को कुछ अनुभव कराने के लिए, उस आत्मा को मुक्त करने के लिए। तो वो भी हमारे अंदर भी होना चाहिए, मुक्तिदाता ग्रुप। तो दूसरी बात है, तीन चीजें होनी चाहिए। बाबा ने कहा अगर किसी के मन के भावों को परखना है, एक मुरली भी है तो शायद 70 मन की है। तो तीन बातें हमारे में होनी चाहिए किसी के मन के भावों को परखना है। और परखने की शक्ति जो सबसे ज्यादा किसमें थी, इस यज्ञ में जिसके बारे में वो चर्चा, दीदी के अंदर, मनमोहिनी दीदी के अंदर एक सेकंड में परख सकते थे। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि सामने वाला अगर आए पता तो चल जाता है कौन सी अपेक्षा इच्छा लेकर आए हमारे पास, तो हम परख सकें। तो परखने की शक्ति चाहिए हमारे अंदर, और परखने और निर्णय करने की शक्ति एक शक्ति से बढ़ेगी। कौन सी है वो हमारे अंदर परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति कौन सी शक्ति से आएगी, वो भी बाबा ने मुरली में कहा है। तो फिर मन के भावों को पढ़ सकेंगे, वो है एकाग्रता की शक्ति। जब तक हमारा मन नहीं विचलित हो रहा है, इधर उधर खंड खंड हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो फिर कैसे परखेंगे। और एकाग्रता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति आएगी योग बल से। लंबे समय से मन हम अपने मन को छोटे छोटे संकल्पों में एकाग्र कर देते हैं तो स्वतः परखने की और निर्णय करने की शक्ति आ जाती है हमारे, और फिर समय पर हम दूसरे के मन के भावों को समझ सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में बाबा कहते हैं ना किसको क्या चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। अब किसको चाहिए प्रेम, हम दे रहे हैं शांति, तो वो भी नहीं चलेगा। तो आने वाले समय में ऐसी ऐसी परिस्थितियों को पार करने के लिए, सामना करने के लिए, या दूसरों को पार कराने के लिए हमारे अंदर जो ईश्वरीय शक्तियां हैं ये पहले से भरपूर होनी चाहिए। इसके लिए बाबा ने कहा सारे खजाने तुम आत्माओं के अंदर पहले पूरे जमा होने चाहिए, कोई भी एक खजाने की कमी नहीं। तो ये सात प्रकार की शक्ति है, निर्भयता की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, और एक अष्ट शक्ति और साथ में एकाग्रता की शक्ति। ये अष्ट शक्तियां हमारे अंदर है, वो शक्तियां अलग है, उनमें से दो चार और भी हैं, लेकिन शक्तियां तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है। एक और लिस्ट निकाली थी शायद 70 के आसपास है, इतनी शक्तियां हैं। तो ये सारी शक्तियां हमारे में, और ये धीरे धीरे जमा होती रहती हैं, लेकिन ये जमा तब हमारे अंदर जब हम अपनी लीकेज को रोकते रहें। तो अगर कहीं ना कहीं लीकेज हो रही है, चाहे वो हमारी दृष्टि से लीकेज हो रही है, चाहे हमारे बोल से जा रही है, चाहे हमारे संकल्पों से जा रही है, चाहे हमारे व्यवहार को देख के वो शक्तियां जा रही हैं, अगर हमारा ऐसा वैसा किसी ने व्यवहार देख लिया तो उसके जो मन में उठने वाले संकल्प है वो हमारी शक्ति को क्षीण कर देंगे। क्योंकि सामने वाले को पता चल गया इनके अंदर समाने की शक्ति तो है नहीं, कि जो बात हमने इनको बताई थी कि आगे बताना नहीं और ये इसने बता दी, हजम नहीं कर पाते हैं, बदहजमी हो गई है। तो सारी शक्तियां धीरे धीरे हमारे अंदर जमा होती रहती हैं। इसलिए बाबा ने कहा इसलिए के लिए क्या बनो, निश्चय बुद्धि बनो, इस प्रश्न के उत्तर में आया ना, निश्चय बुद्धि बनो। सबसे बड़ा निश्चय भगवान के उपनिश्चय करना फिर भी आसान होता है, उससे बड़ा निश्चय क्या है, अपने ऊपर निश्चय नहीं होता। इसलिए बाबा कई दफा कहते ना कि जिस दृष्टि से भगवान बच्चों को देखते हैं, बच्चे उस दृष्टि से अपने आप को नहीं देखते। ये बाबा हमको कहते हैं तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, अब भगवान ने तो एक्सेप्ट कर लिया तुम हो, हम एक्सेप्ट काम पूरा करते हैं, हम तो हैं ही हैं, भले हम माने नहीं माने लेकिन उसने तो मान लिया ना। तो बाप ने मान लिया कि मेरा बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान है और बच्चा नहीं मान रहा है, तो फिर शक्ति कहां काम कैसे करेगी। बाप ने स्वीकार कर लिया, हमने स्वीकार नहीं किया, स्वयं के निश्चय में कमी है। ये हमने स्वीकार कर लिया कि बाप हमारा है, लेकिन जो वो कह रहा है उसको उसके ऊपर निश्चय हमारा थोड़ा डामाडोल है। इसलिए बाबा ने कह रहा है ना कि ज्ञान के हर पॉइंट के ऊपर भी निश्चय, लंबे समय से भेड़ों के साथ में रह गए इसलिए हमारी समझ भी वैसी बन गई है, तुम भेड़ो भेड़ो भेड़ो, है ना। वो सुनाते ना एक कहानी है, हाँ एक कहानी सुनाते हैं ना कि भाई एक हिप्नोटाइज किया, वो भेड़ों को मारते तो भेड़े भाग जाती थी, तो उसने क्या सोचा क्या किया जाए इन भेड़ों को, तो उसने भेड़ों को प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी, तुम भेड़ नहीं हो शेर हो, तुम जो कट रही है ना वो भेड़ है तुम शेर हो। तो ऐसे धीरे धीरे भेड़े जब कटने के लिए जाती थी तो दूसरी सोचती थी कि वो जो कट रहे हैं वो भेड़ है मैं तो शेर हूं, ऐसे सोचते सोचते सारी भेड़े कट जाती हैं। तो ऐसे हम भी क्या सोचते हैं, हम अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं, जो कट रहा है ना वो भेड़ है हम तो शेर हैं, लेकिन ऐसे सोचते 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 हमारा भी कल्याण हो जाता है। तो जो बाबा सम्मान देते हैं उसको हमको एक्सेप्ट करना है कि हाँ वो हम हैं, और वो धीरे धीरे छोटे छोटे बताया ना संकल्पों के, छोटे छोटे संकल्पों पर कि आज के दिन में हमको ये सवेरे से शाम तक ये चीज नहीं करनी है तो नहीं करनी है, और वो शक्ति हमारी बन जाएगी। तो ये सात प्रकार की शक्तियां। दूसरा तीन बातें इसके लिए बाबा ने वो मुरली में बताई थी मन के भावों को जानने के लिए, एक तो रूहानियत जीवन में होनी चाहिए, जब हम उन आत्माओं के ईविल स्पिरिट को मुक्त करने के लिए या उनसे रूहान करते हैं तो सबसे पहले हमारी रूहानियत होनी चाहिए, उस समय जिस्मानी आवेश नहीं होना चाहिए हमारे में, आत्मिक भाव होना चाहिए, अपनेपन का भाव होना चाहिए। रूहानियत, रुहाव और रहम दिल, ये तीन बातें बाबा ने बताई कि रूहानियत अगर हमारे जीवन में है तो वो अनुभूति करेगी, उसको उस रूह का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो अनुभव होगा, उसको अपनेपन की फीलिंग आएगी उसको, और उसके साथ साथ रुहाव, हमारी बातों में रुहाव होना चाहिए। मैं इतना आवेश वाली, क्रोध वाली या दुख देने वाले उसके वाइब्रेशन हमारी बातों के अंदर नहीं हो, नहीं तो उसको लगेगा इसमें भी कोई ना कोई स्वार्थ है। कई आत्माएं तो संसार में ऐसे होता ना, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरी आत्माओं को पकड़े रहते हैं। अब ऐसी आत्माएं भी आएंगी, और ऐसी आत्मा एक बार यहां भी आई थी सवेरे के ग्रुप में, डॉक्टर सीमंत भाई के टाइम में, उसमें उधर वो उड़िया माता थी और उसके अंदर जो कन्या है उसको तो हिंदी, माता जी को हिंदी बोलने नहीं आती थी, लेकिन जो कन्या है वो हिंदी बोल रही थी, तो उसने भी बताया कैसे कैसे मुझको कंट्रोल करके भेजा है। हाँ पर्शियन भाषा पता नहीं उस भाषा का, तो माना जो बीच में आत्मा है वो तो अपना काम करेगी ना, वो उसी भाषा में बोलेगी जो उसको आती है, अब जो जिसके अंदर है उसको तो पता नहीं उस भाषा का है। तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे बोल है रूहानियत होने वाले होने चाहिए, और रुहाव होना चाहिए उसमें, और रहम दिल वाले होने चाहिए, उन्हें रहम करना उसके ऊपर, अपनापन हो, माना उसको अपना समझना है कि वो नहीं है वो हम है, हम एक ही परिवार के हैं। जैसे लौकिक में हमारे परिवार में कोई विपत्ति आती है, विपदा आती है तो क्या करते हैं हम, उस पर कितना फोकस कर देते हैं, सब छोड़ छाड़ के उसको उसके पीछे पड़ जाते हैं उसका कल्याण करने के लिए। तो उसी तरह संसार की हर आत्मा अपने परिवार की है, चाहे वो स्वर्ग में आए नहीं आए, लेकिन है जी अनादिकाल क्या है उनका, अनादिकाल में तो हम एक ही परिवार के बच्चे हैं ना। तो ये भावना नेचुरल रूप से रहने से हमारे कई प्रकार के हिसाबता स्वतः करते जाते हैं। हाँ हमारा तो पूरे कल्प का पार्ट है ना, वो आत्माएं बाद में आएंगी तो उनके साथ हमारा पार्ट है। अब जैसे इस समय हम संबंध संपर्क में आत्माओं में आते हैं, भले वो ज्ञान में नहीं आती बिल्कुल भी, लेकिन वो संबंध संपर्क में आ रही ना, अगली बार फिर आएंगी ना हिसाब किताब के लिए। और इसके लिए योग के भी हमको प्रयोग करने हैं, एक तो बाबा ने बताया कि संगठित रूप से ग्रुप बनाओ, तो तो हम नियमित रूप से एक तो अपने लिए योग करते करते हैं, दूसरा डेली चाहे सवेरे या चाहे शाम 10-12 प्रकार के जो हम कभी कभी करते हैं, अधिकतर करते हैं, वो डेली करने हैं। वैसे तो करते होंगे अपने अपने तरीके से सभी। एक तो स्वयं पहले पहले हम स्वयं को बाबा से फुल चार्ज कर लेते हैं, दूसरा फिर ब्राह्मण आत्माओं को, जितनी भी ब्राह्मण आत्माएं उनके हिसाब तक चुकतु करने के लिए, उनके विघ्नों को समाप्त करने के लिए, क्योंकि यज्ञ की संपन्नता के लिए सब ब्राह्मणों का निर्विघ्न होना अति आवश्यक है। अगर हम किसी ब्राह्मण के प्रति भी विघ्न रूप बनने हैं तो भी हम यज्ञ के प्रति विघ्न बनने हैं संकल्प से भी, तो यज्ञ की ब्राह्मण बच्चे जितने भी हैं सब आत्माओं का जीवन निर्विघ्न हो उसके लिए भी हमको थोड़ा समय 5 मिनट 10 मिनट योग अवश्य करना है। इसलिए बाबा ने कहा ना, सेवा केंद्रों को निर्विघ्न बनाने के लिए अमृत बिल्ले के बाद योग अवश्य करो 5-10 मिनट। हाँ जी, एक संकल्प में पद्मों की कमाई, शायद वरदान में आज एक संकल्प भी इतना व्यर्थ ना जाए, एक सेकंड भी व्यर्थ गया माना पद्मों की कमाई नष्ट आज के वरदान में है। तो दूसरा, पहले तो स्वयं को चार्ज करना है, दूसरा हर ब्राह्मण आत्मा को फुल चार्ज कर देना है, तीसरा जितने भी भक्त आत्माएं हैं उनकी भी इच्छाएं हैं ना, उनकी शुभ इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनको भी अपने इष्ट देव में रूप में स्थित होकर उनको भी साकाश देना, शक्ति देनी है। और चौथा, जितने भी ईविल स्पिरिट की बाबा ने बात की, भूत प्रेत भटकती आत्माएं हैं टोटल, और ये संगठन के अंदर करना है। संगठन के अंदर हमको, संगठन के अंदर हमारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता क्योंकि संगठन एक किला है, शक्ति है। तो ये चौथी बात। और पांचवी, जितनी भी अशांत आत्माएं दुखी हैं रोगी हैं उनको साकाश देना, कमेंट्री के माध्यम से कर सकते हैं या पर्सनल, अंदर ही अंदर कमेंट्री चलती रही हमारी। और उसके आगे की, आजकल जो बच्चे हैं, बच्चे बहुत टेंशन में आए, कल दुखी रोगी शांत अलग हो गया, लेकिन बच्चे आजकल बहुत टेंशन में है, पढ़ाई नहीं हो रही है स्कूलों में, पढ़ाई हो रही है लेकिन वो ऑनलाइन, कहीं उनको तो सिस्टम ही नहीं है, क्या करेंगे बेचारे, कई साल बर्बाद हो गया उनका, 1 साल, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाइयां चल रही हैं, उनके माँ बाप टेंशन में है, अच्छा टीचर बहुत टेंशन में है, उनको पेमेंट नहीं मिल रही है, पेमेंट भी कैसे मिले क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही है, और कैसे कैसे परिस्थितियां क्रिएट हो गई हैं ये। उसके बाद प्रकृति को सकाश देना, हाँ स्कूलों को क्वारंटाइन हाउस बना दिया हुआ है, तो फिर प्रकृति को सकाश। फिर उसके बाद 3 बातें मुख्य रूप से और करनी है, एक तो माफी मांगनी जो कि बहुत जरूरी है, वो आत्मा में पता नहीं सावकता के रूप में हमारे सामने कैसे कब उपस्थित हो जाए, पहले से माफी मांग लो उनसे। इसलिए ब्राह्मण जीवन में भी किसी के साथ नया सावकता नहीं बनाना है, अगर हमारा किसी भी कारण से मन मुटाव होता है तो उसको क्लियर कर दो, मन में नहीं रखो। जैसे हम देख रहे हैं हमें हमारा कई दफा होता है, कुछ सामने वाला होता है तो मन में अगर आता है, लेकिन हम अपने बोल को ऊपर नीचे नहीं करें, उसको गले पकड़ लें, क्या फर्क पड़ता है। हाँ कई नए ब्राह्मण आ रहे हैं हिसाब किताब लेकर आ रहे हैं, जबरदस्त होते हैं, तो माफी मांगनी है। नेक्स्ट है माफ कर देना है सबको, बिना शर्त के, कोई कंडीशन नहीं, बिना शर्त के सबको, क्योंकि हम लोग को भी कहीं उन्हें दुख दिया होगा तो हमने मन में रखा हुआ, छोड़ेंगे नहीं इसको, तो बिना शर्त के माफ कर देने का वो। तो कई प्रकार के सूक्ष्म हो जाते हैं, तो माफ करना जरूरी है। नेक्स्ट है सबको धन्यवाद देना है कि अगर किसी ने दुख दिया तेरा भी धन्यवाद, अगर हमको किसी ने सहयोग दिया उसका भी धन्यवाद, प्रकृति का भी धन्यवाद। और एक है उसके बाद है जानवरों को सकाश, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सबको सकाश देनी है, वो भी सब अपने इसमें रहते हैं ना, अपनी सृष्टि में है ना, अपने किसी ना किसी प्रकार से हमारे रक्षक है, वो संरक्षक है, वो प्रकृति के संरक्षण करता है वन्य जीव, क्योंकि वन्य जीव प्रकृति का संरक्षण है तो प्रकृति जल्दी जल्दी कट जाएगी सारी, और शोभा है जंगल की, शोभा है संसार की, शोभा है, वो उनको देख के लोग कितना खुश होते हैं, हाँ वो नहीं हो गए तो दुनिया में क्या करेंगे, शोभा है जो चिड़ियाघर देखने जाते कितना खुश होते हैं लोग उनको देख के, यहां दिख जाए कोई जानवर तो कितना खुश हो जाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ देखते रहते हैं इधर। और लास्ट में पूरे ग्लोब को मर्ज कर देना सूक्ष्म बतन में, और सबको होल से लेकर सकाश दे देना। तो ये 12 बातें हैं सकाश देने की। तो डेली अगर हम करेंगे तो हम अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करेंगे, दूसरों को भी शक्तिशाली बना सकेंगे। तो ये प्रश्न ये था जिसको हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। कि कई ब्राह्मण आत्माओं में इविल स्प्रिट का भी प्रभाव पड़ जाता है, तो उन ब्राह्मण आत्माओं को मुक्त कैसे करना है? बाबा बहुत अच्छी विधि बताई है। कई ब्राह्मण आत्माओं पर भी इविल सोल्स का प्रभाव पड़ जाता है, उसमें क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा इसके लिए पहली बात, सेवा के अंदर का वातावरण बहुत ही शक्तिशाली सदा रहना चाहिए, अखंड योग बठी चलती रहे, कोई ना कोई एक बैठे रहे, और साथ अपना भी वातावरण शक्तिशाली रहे, फिर यह इविल स्प्रिट कुछ नहीं कर सकती। बाबा कहते हैं मन को पकड़ती है, मन को कमजोर करती है, मन की शक्ति कमजोर होने कारण ही उसका प्रभाव पड़ता है। अगर मन शक्तिशाली तो कुछ भी हो जाए, तुम्हारे आसपास मंडराएगी जरूर, शांति की अनुभूति करके जाएगी। मानव को कमजोर है और उसके ऊपर प्रभाव पड़ भी जाता है, तो शुरू से पहले से ही उसके प्रति ऐसे योगयुक्त आत्माएं विशेष योग बट्टी करके रख करके उसको शक्ति दे, और वह जो योगयुक्त ग्रुप है वह समझे कि हमको ये विशेष कार्य करना है। जैसे दूसरे कार्यों के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसे इस कार्य के लिए भी प्रोग्राम बनाना है, फिर वह आत्मा बच सकती है क्योंकि उसको ताकत मिलेगी उन आत्माओं से, योग बल से। भले वह आत्मा परवश है होने के कारण योग में नहीं भी बैठ सकती, क्योंकि वो तो दूसरे का प्रभाव होता है उसके ऊपर, तो वह भले ना बैठे लेकिन आप अपना कार्य निश्चय बुद्धि होकर के करते रहो, तो धीरे धीरे उसकी चंचलता शांत हो जाएगी। वह इवल आत्मा पहले आप लोगों के ऊपर भी बार करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप समझो ये कार्य करना ही है, डरो नहीं, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हट जाएगा और धीरे धीरे वो ब्राह्मण बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।
चलती रही हम, चलते रहे तेरी नक्शे कदम पर, चलते रहे गाती रही।